नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार श्रोताओं, मैं अंजलि आज खबर लेकर आई हूँ। एक नागरिक के स्वास्थ्य पर देश एक दिन में खर्च करता है 3 रुपए। भारत में प्रति व्यक्ति के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रति वर्ष खर्च की गई राशि 1112 रुपए है। यह आंकड़े देश के शीर्ष निजी अस्पतालों में परामर्श पर खर्च किए जाने वाले लागत से कम है। इस आंकड़े पर यह राशि 93 रुपए प्रति माह या 3 रुपए प्रतिदिन के अनुसार होती है। 2015 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% खर्च करते हुए भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय दुनिया में सबसे कम है। यहाँ तक कि सबसे कम आय वाले देश जो स्वास्थ्य पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% खर्च करते हैं उनकी तुलना में भी कम है। जैसा कि 19 जून 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्णन 2018 से पता चलता है, भारत में प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाली राशि की तुलना में श्रीलंका करीब 4 गुना ज्यादा खर्च करता है, जबकि इंडोनेशिया 2 गुना ज्यादा खर्च करता है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% खर्च करने वाले कम आय वाले देशों की तुलना में भारत सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% खर्च करता है, लेकिन भारत ने जीडीपी के 2% के लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं किया है। इस संबंध में इंडिया स्पेंड ने अप्रैल 2017 की रिपोर्ट में बताया है, रोगियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए निजी क्षेत्रों में जाने का एक कारण भारत का कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च है। 50 देशों के निम्न मध्यम आय वर्ग में भारतीय छठा सबसे बड़ा आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय करता है। जैसा कि हमने मई 2017 की रिपोर्ट में बताया है, विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक ये लागत हर साल 32 से 39 मिलियन भारतीयों को गरीबी रेखा के नीचे धकेलती है। अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना भारत में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल है।
दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज मैं बात करने वाला हूं कि 2020 तक 21 शहरों में समाप्त हो सकता है भूजल। जी हां, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। 2020 तक 21 भारतीय शहरों में भूजल समाप्त हो जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट के बाद नीति आयोग ने जल संसाधनों के तत्काल और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर डाला है। ऐसे इलाकों में जहां सालाना उपलब्ध 40% से अधिक सतह के पानी का उपयोग किया जाता है, लगभग 600 मिलियन भारतीय पानी को लेकर मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सुरक्षित पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 14 जून 2018 को जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि CWMI के रिपोर्ट के अनुसार स्थिति के और खराब होने की आशंका है, क्योंकि पानी की मांग 2050 तक आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। 2015-16 में 24 राज्यों में से 14 राज्यों में किए गए पानी प्रबंधन पर विश्लेषण में 50% राज्यों का स्कोर बहुत कम है। भारत के 54% कुओं में भूजल के स्तर में गिरावट आई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्यों में जल सूचकांक के स्कोर व्यापक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों ने 50% से कम स्कोर प्राप्त किया है और उनके जल संसाधन प्रबंधन परंपराओं में काफी सुधार किया जा सकता है।
धन्यवाद राजीव जी। और मैं मधु आज जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है मिड डे मील स्कीम में अंडे पर आहार राजनीति। रिसर्च स्कॉलर और राइट टू फूड अभियान कार्यकर्ता स्वाति नारायण ने हाल ही में सरकारी डेटा और मीडिया रिपोर्टों का उपयोग करते हुए पाया, भारत में 5 साल से कम आयु के 7.5% बच्चे गंभीर रूप से वेस्टेड हैं। डेटा के मुताबिक 2005-06 में यह 6.4% था, जिसमें 1.1% की वृद्धि हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू राइट विंग का अध्ययन करने वाले रिसर्च स्कॉलर मनीषा चचरा ने अपनी विचारधारा में सात्विक भोजन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, भाजपा संघ परिवार का एक सहयोगी है जो वैचारिक रूप से हिंदुत्व की विशेषताओं के रूप में कुछ ऊपरी जाति के हिंदू मान्यताओं का पालन करती है। इनमें से एक सात्विक आहार है जिसमें मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन शामिल नहीं है। इस तरह के अंडों के बहिष्कार के लिए एक बड़ी आहार राजनीति है। कुछ आहार विशेषज्ञ मध्य भोजन में अंडों को शामिल करने के लिए सावधानी पर जोर देते हैं। मनसी पाटिल कहती हैं, अगर बच्चे कुपोषित हैं और हम अचानक अंडे पेश करते हैं तो इसका उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो मान लें कि हमें सप्ताह में 2-3 अंडों से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि शरीर को वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, जिससे स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को अंडे दिए जाएं। इन हस्तक्षेपों को हर जगह फैलाना चाहिए और केवल सरकार की बजाय इनमें समुदायों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।